अग्निकुंड में भुना हुआ चना कभी फिर अंकुर नहीं हो सकता, वैसे मुझे समर्पित किए हुए कर्मों का कभी कोई फल नहीं हो सकता। ये निष्काम कर्म होता है। अभी तो भगवान से मांगते रहते अपन कि ये दे दो वो दे दो, तेरे सवमणि करेंगे, तेरे भोग लगाएंगे, तेरे प्रसाद चढ़ाएंगे, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और काम नहीं होता तो चढ़ाते हो नहीं चढ़ाते हो। पर जो कोई भी काम अच्छा करता है, भोजन करा रहा है, दान दे रहा है, पाठ कर रहा है, तो उसका फल भगवान को अर्पण हो जाए। शिव अर्पणमस्तु, गुरु की प्रसन्नता के लिए, शिव की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ, बस ऐसा सोचे, इसको निष्काम कर्म कहते हैं। ऐसे निष्काम कर्म करने से क्या होता है, फल तो मिलता ही नहीं, तो उसका फल क्या मिलेगा, भगवान की प्रसन्नता मिलेगी। भगवान उससे प्रसन्न होंगे, निष्काम कर्म करने से पापों का नाश हो जाता। कहने का आशय है कि जो कर्म मुझे अर्पित किए जाते हैं उनके फल के बंधन में कर्ता कभी नहीं बनता, अर्थात वे कर्म उसके लिए कभी बंधन कारक नहीं होते। हे पार्थ, जब कर्म शेष रहते हैं तभी उसके फल भी उत्पन्न होते हैं, और उन फलों का भोग करने के लिए जीव को कोई ना कोई शरीर तो धारण करना ही पड़ता है। परंतु यदि वे सारे कर्म पूर्ण रूप से मुझे समर्पित किए जाए, भगवान को अर्पण किए जाए, तो उसी समय जीवन और मृत्यु का सारा चक्कर ही समाप्त हो जाता है। यानी निष्काम कर्म करने से ज्ञान की तरफ बढ़ता है। आगे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये कहने का कि आज ही कौन सी जल्दी है, अभी क्या देरी हो रही है, भजन कर लेंगे हैं, कल देखा जाएगा, इस प्रकार आज का काम कल पर टकराने टालने का समय नहीं। इसलिए आत्मस्वरूप प्राप्त करने का सहज सबसे उपाय फल संन्यास युक्त कर्मयोग है, मतलब त्याग पूर्वक। न्यास का, संन्यास का मतलब होता है त्याग, है ना, कर्मों के फल का त्याग है, और उसमें उसके विषय में तुम्हें बतला दिया है, तुम इस देह के बंधन में मत रहो तथा सुख दुख के समुद्र में डुबकी मत लगाओ, और सहज में इस सुगम मार्ग में चलकर प्रसन्नता से मेरे आनंद स्वरूप में मिले रहो। बहुत ही सरल अच्छा रास्ता बताया भगवान ने, मैं करूं कुछ भी धरूं, सिर्फ एक तेरे लिए, जिंदगी तेरे लिए और मौत भी तेरे लिए। अब अगर ऐसा करके कुछ काम करता है तो वो पूर्ण निष्काम काम होता है। पर अपन तो सोचते हैं फल की इच्छा, ये मिले वो मिले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे 29वें श्लोक के अर्थ में कि हो सकता है कि तुम मुझे ये पूछो कि वह मैं कैसा हूँ, तो उसका एकमात्र उत्तर है कि यह मैं सब भूतों में समभाव से रहता हूँ। जितने भी प्राणी हैं, भूत प्राणी हैं, जिन्होंने जीवन धारण कर रखा है, उसमें परमात्मा का निवास, आत्मा रूप से, परमात्मा का आत्म रूप से, पर वो जीवात्मा बन जाता, जीव उपाधि लग जाती, और जीव उपाधि हटा दो तो आत्म स्वरूप हो गए। जो जीव मेरा सत्य स्वरूप पहचान लेते हैं, अहंकार का नाश कर देते हैं, सब कर्मों और भावों के द्वारा मेरा ही भजन करते हैं, यानी अपना समस्त जीवन और कर्म मुझे ही समर्पित कर देते हैं, वे चाहे शरीर में भी रहें पर यथावत वे शरीर में नहीं होते, बल्कि पूर्ण रूप से मेरे स्वरूप में ही रहते हैं और मैं भी उन्हीं में रहता हूँ। ये इतना विशाल वटवृक्ष अपने पूर्ण विस्तार के साथ एक तुच्छ बीज में विलीन रहता है, और वह बीज उसी वटवृक्ष में रहता है। इसी प्रकार मुझ में और ऐसे भक्तों में सिर्फ भारी और नाम मात्र का अंतर रहता है। पर यदि अंतर की वस्तु स्थिति का विचार किया जाए तो जो कुछ मैं हूँ वही मेरे भक्त भी हैं, क्योंकि आत्मस्वरूप मैं भी हूँ, आत्मस्वरूप वही है, पर वो जीवात्मा बन जाते हैं मेर मेरा करके, और हम दोनों में कोई भेदभाव नहीं रहता। जैसे किसी व्यक्ति से मांग कर लाया हुआ आभूषण यदि पहन लिया जाए तो भी उसके संबंध में किसी को यह भाव नहीं होता है कि यह आभूषण मेरा है, वैसे ही मेरे भक्त यद्यपि शरीर धारण करते हैं परंतु फिर भी वे कभी उसे अपना नहीं मानते। पुष्प की सुगंध वायु के साथ मिलकर बहुत दूर निकल जाती है और पीछे जो खाली पुष्प रहता है वह जब तक डंठल के साथ लगा रहता है तब तक कुमलाकर नहीं गिरता। इसी प्रकार यह भक्त भी जिसके मन में चित्त में अंतकरण में अपनेपन का भाव निकल जाता है अंतकाल तक किसी प्रकार की अपनी आयुष्य धारण किए रहता है। ये राम जी जो हे अर्जुन, राम जी नहीं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन जो अपने कर्तव्य के अहंकार का मुझ पर आरोप कर देता है उसको अहंकार मुझ में ही समा जाता है कि मैं जो कुछ हूँ भगवान की कृपा से हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, है ये काम भगवान ने किया। वो तो कहता मैंने किया है और वो फिर अहंकार मेरे भक्त के लिए किसी प्रकार का भी बंधन का कारण नहीं होता है। आगे इसी प्रकार 30वें श्लोक के अर्थ में बतला रहे हैं, इस प्रकार निर्मल प्रेम भाव से जो मेरा भजन करते हैं उनको पुनः शरीर प्राप्त नहीं होता, फिर चाहे वे लोग किसी भी जाति के हों इसमें कुछ भी हानि नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश कोई भी हो। हे अर्जुन यदि आचरण की दृष्टि से ऐसा मनुष्य दुराचारी भी तो भी वह यह नहीं भूलना चाहिए कि शरीर मरने के बाद मिटने के बाद या मिटने के समय शरीर देहावसान के समय वो भक्ति के चबूतरे पर चढ़ चुका होता है। शरीरपात होने के समय में जैसी बुद्धि होती है तदनुसार आगे की गति का स्वरूप भी निश्चित होता है। अंतमति सो गति बोलते हैं, तो जैसा जैसा भाव स्मरण होता है शरीर को छोड़ते तो वैसा का वैसा ही उसके भाव शरीर को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो अंतकाल में अपना जीवन भक्ति के हाथ में सौंप देता है वह पहले चाहे दुराचारी भी रहा हो, दुष्ट से दुष्ट भी रहा हो, पर वह अपनी भक्ति के बल से सर्वश्रेष्ठ गिना जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एक बार किसी बाढ़ में डूब जाए और बिना मरे ही सकुशल बाहर निकल आवे तब उसका पहले का डूबना जैसा व्यर्थ हो जाता है, वैसे यदि देहवसान काल के समय मतलब शरीर त्यागने के समय में व्यक्ति भक्ति ग्रहण कर ले तो उसके पूरे पहले किए हुए पाप कर्म सब मिट जाते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी समय दुराचारी भी रहा हो, नशा पत्ता किया हो, दुष्ट काम किया हो, पर यदि वो पश्चाताप रूपी तीर्थ में या मैं नहीं करूँगा मैंने ऐसा क्यों किया अवगहन करके शुद्ध मन से मेरे स्वरूप में समा जाए तो उसका कुल पवित्र समझना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि उसकी कुलीनता निर्मल है, वास्तव में उसने अपने जन्म सार्थक कर लिया है। फिर उसके लिए ऐसा हो जाता है कि मानो उसने समस्त विद्याओं को पढ़ लिया हो, इस प्रकार के तप को सब प्रकार के तप को कर चुका हो और अष्टांग योग का अभ्यास कर लिया हो। हे पार्थ अब इस विषय के विस्तार की आवश्यकता नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिसके चित्त में मेरी अखंड अनुराग उत्पन्न हो जाता है, अखंड प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वो पूर्णतया सब कर्मों को पार हो जाता है। हे अर्जुन जो अपने मन और बुद्धि एक निष्ठा की पिटारी में भरकर संपूर्ण रूप से मेरे अधीन कर देता है वह इसी प्रकार कर्मातीत हो जाता है। कहने का मतलब मैं करूं कुछ भी धरूं सिर्फ एक परमात्मा के लिए अपने कल्याण के लिए, जब तो वाहवा है, सब लोग अपने लिए भागा दौड़ी करते हैं, भविष्य की निधि बनाते हैं, संचित कर्म करते हैं इकट्ठे कि भाई स्वर्ग मिलेगा वो मिलेगा, वो सारी आशाओं को लोक लाज संकोच सब छोड़ करके बस प्रभु की शरण हो जाता है कि मेरी गति तो आप हो।